ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा। दिल्ली सरकार, भारत सरकार का संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को भारत में बसाने में मदद करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया और सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों की तलाशी ली। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा। भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनने के बाद ये उनका पहला बजट होगा। आगामी बजट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों से सुझाव मांगे थे। इसी संबंध में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब तक हमें ईमेल के माध्यम से 3,303 सुझाव और व्हाट्सएप के माध्यम से 6,900 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के बहुमूल्य सुझावों ने विकसित दिल्ली बजट 2025 को और सशक्त बनाया है।
सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। और दिल्ली की जनता के बजट में कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से अछूता ना रहे, इसका ध्यान हमने रखा।
दिल्ली सरकार, भारत सरकार का संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने के लिए आज एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला 28वां मंडल बन गया है।
नेवा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सदन के कामकाज को डिजिटल बनाकर दस्तावेजों को वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करना तथा विधायकों और सचिवालय कर्मचारियों के बीच निर्बाध समन्वय को सक्षम कर विधायी प्रक्रियाओं में दक्षता, पहुंच और स्थिरता लाना है। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह व्यवस्था दिल्ली के लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी के विधायकों के लिए फायदेमंद होगी।
टेक्नोलॉजी आने से बहुत ही फास्ट तरीके से कागज और प्रोसेस जितना भी है और पूरा देश भर में जितने असेंबली हैं, एक तरीके से चले और हमारे लोगों का सबसे बड़ा पंचायत जो पार्लियामेंट है, इसके साथ लिंक रहे। दिल्ली विधानसभा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ तालमेल करके विधान का एक एप्लीकेशन का जो हमारा कार्यक्रम है चलेगा और पूरा देश में जैसे चला है दिल्ली विधानसभा का गतिविधि भी तेज होगा।
वही दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा कागज रहित हो जाएगी और 100 दिनों के भीतर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू हो जाएगी।
आपके सहयोग से हम 100 डेज के अंदर अंदर दिल्ली की असेंबली को नेवा से जोड़ेंगे। ई विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा इसको बनाएंगे। काफी सालों से काम रुका हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर बार बार अप्रोच भी किया कि भाई आप करिए, हम आप तरह से कॉपरेट करेंगे, लेकिन नहीं किया गया, जिसके कारण जो फैसिलिटी दिल्ली की विधानसभा को बहुत साल पहले मिल सकती थी नहीं हुई, लेकिन अब वो दौर गुजर गया।
नेवा सभी विधायी कार्यों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसमें नोटिस प्रस्तुत करना, मंत्री स्तरीय उत्तर, विधायी कार्य, चर्चा समिति की रिपोर्ट और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आज मादीपुर और त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक कैलाश गंगवाल और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री वर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में सफाई अभियान तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि राजधानी के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। श्री वर्मा ने त्रिनगर क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से पड़े विकास कार्यों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सीवर सफाई कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नगर निगम में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली विधानसभा के 14 सदस्यों को नामित किया। श्री गुप्ता ने बताया कि नियुक्त विधायक बजट निर्माण, नागरिक प्रशासन और शहरी शासन में निगम की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य नगरपालिका चुनौतियों का समाधान करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्री गुप्ता ने कहा कि इन विधायकों का कार्य दिल्ली विधानसभा और निगम के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ शहरी विकास को गति देने, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक स्वच्छता जैसी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को भारत में बसाने में मदद करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, 6 को निर्वासित किया गया और 4 को जांच के दायरे में रखा है। इस अभियान में जाली दस्तावेज बनाने, आश्रय प्रदान करने और अवैध धन हस्तांतरण में शामिल 8 भारतीय नागरिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मीडिया के साथ बातचीत में दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने कहा कि अब तक हमने दर्ज मामलों के संबंध में 18 बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें से 8 को गिरफ्तार किया गया है।
हमने अभी तक जो ये केस रजिस्टर किया था उससे अब तक टोटल 18 बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया है, जिसमें काफी लोग अरेस्ट किए हैं, 8 लोग अरेस्ट किए हैं, 6 लोग डिपोर्ट किए हैं और बाकी 4 लोगों पर फर्दर इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा हमने 8 इंडियंस भी अरेस्ट किए हैं जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे उनकी मदद करी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बिहार राज्य वीरों, विद्वानों, महापुरुषों और लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि बिहार की संस्कृति, समृद्धि और विकास की यात्रा यूं ही निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आज बिहार दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की गौरवशाली इतिहास और उसके उपलब्धियों को अगर आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान, शांति, अध्यात्म और शौर्य का एक नाम बिहार है। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वह बिहार के भाई बहन हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि बिहार की संस्कृति और इतिहास ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है।
बिहार दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं तो उनका अभिप्राय भी यही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को कोई काम कर रहा है तो मेरा बिहार का कोई भाई बहन है। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि हमारे बिहार और पूर्वांचल के साथ ही हर उद्योग में, हर व्यापार में आपको काम करते मिले, बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़े बड़े इंडस्ट्रियां सब हमारे बिहार के भाई बहन चलाते हैं।
दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से निगम 311 ऐप का उपयोग कर शहर को स्वच्छ और हरित बनाने का आग्रह किया है। निगम ने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक प्रदूषण, सफाई और अन्य नागरिक कार्यों से जुड़ी समस्याओं की तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। निगम ने बताया कि पिछले साल 1 मार्च से लेकर इस साल 22 मार्च तक लगभग 4,50,000 शिकायतें निगम के ऐप पर प्राप्त हुई, जिनमें से 3,50,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादीपुर इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब की सप्लाई करते हुए एक शख्स को हरियाणा के दादरी जिले से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध शराब के 153 कार्टन बरामद किए। पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस को पता चला कि अवैध शराब की सप्लाई कर रहे वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी ताकि वाहन और सप्लायर की पहचान छुपाई जा सके। पुलिस के अनुसार पिछले 6 महीने से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अवैध शराब की सप्लाई की जा रही थी। इस काम के बदले आरोपी को 25,000 रुपये प्रति माह और हर डिलीवरी पर 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता था। दिल्ली मेट्रो ने आज पटेल चौक मेट्रो संग्रहालय पर साहित्य अकादमी के सहयोग से 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के 100 बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक कथा वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक सुश्री स्तुति और सुश्री जयश्री द्वारा बच्चों को दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां रुचिपूर्ण तरीके से सुनाई गयी तथा कथा वाचन के बाद साहित्य अकादमी द्वारा बच्चों को किताबें भी वितरित की गयी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों की तलाशी ली है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न कंपनियों, उनके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। तलाशी के दौरान एजेंसी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य सामग्री बरामद की। ये मामले 2011 से 2014 के बीच स्पोर्ट सिटी परियोजनाओं के आवंटन, विकास और मंजूरी में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित हैं। ऐसा संदेह है कि इससे राज्य के खजाने को लगभग 9000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और राज्य के खर्च पर कुछ डेवलपर्स को अनुचित लाभ हुआ। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन बैडमिंटन में नितेश कुमार, कृष्णा नागर, मनीषा रामदास और संजीव कुमार ने अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। महिला पैरा तीरंदाजी में पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी ने फाइनल में प्रवेश किया है। उभरती हुई पैरा तीरंदाज पायल नाग ने भी फाइनल में जगह बनाई। शीतल देवी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में शीर्ष एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने को एक शानदार अवसर बताया।
खेलो इंडिया हो रहा है, बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं आर्चरी में, उनको खेलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि उनके साथ खेलने से। जैसे हम भी बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत सारे आर्चर आते हैं, उनके साथ खेलते हैं। खेलो इंडिया हर बार होना चाहिए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले खेलने को। यहाँ पे मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है।
पैरालंपिक पदक विजेता राकेश कुमार ने भी पैरा तीरंदाजी के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने खेलों की प्रशंसा करते हुए इसे युवा पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच बताया।
पैरा गेम्स एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि जो भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं और जो हम जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करें, उनके साथ खेलें, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पे पैरालंपिक एशियन गेम में मेडल ला के देश का नाम रोशन करें। नए आने वाले जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी गेम से है, मेरा उनसे विनती रहेगी कि वो सिर्फ अपने कोच जिनके पास वो सीख रहे हैं वो जो कहते हैं वो करें। मैं आज तक वही करते आया हूँ और सफलता मेरे आगे आगे रही है हमेशा।
इस बीच निशानेबाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल ने रजत और आकांक्षा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में तमिलनाडु 16 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ पहले, हरियाणा 14 स्वर्ण सहित 45 पदक लेकर दूसरे और राजस्थान 10 स्वर्ण सहित 26 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली 3 स्वर्ण सहित 17 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि कल प्रसार भारती द्वारा आयोजित वॉकथॉन के मद्देनजर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक यातायात नियम और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। ये आयोजन सरकार की फिट इंडिया पहल के अनुरूप है। इस आयोजन में दूरदर्शन के कर्मचारियों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित लगभग 500 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा। दिल्ली सरकार, भारत सरकार का संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को भारत में बसाने में मदद करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया और सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में अनियमितताओं के आरोप के संबंध में दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों की तलाशी ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।